आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य। ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से। यानी कि ये है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे। जय श्री कृष्णा साथियों। आपको बता दें कि 50वें और 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सम्बुद्धि युक्त कर्म योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लग जाने की आज्ञा दी है और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 52वें और 53वें श्लोक में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। ये पठन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा और तभी जारी रहेगा जब आप उत्साहवर्धन करते रहेंगे, इसे सुनते रहेंगे, इसके पठन से लाभान्वित होते रहेंगे और इसकी सूचना मुझे मिलती रहेगी तो मैं बड़े उत्साह से इसको आगे से आगे इस कार्यक्रम को हम लेकर के जाएंगे। आपके ध्वनि संदेश इस भूमिका अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो साथियों, आपके भेजे हुए ध्वनि संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं। आज हमने जिस ध्वनि संदेश को चयन किया है आज शामिल करने के लिए, वो हमें भेजा है राजसमंद कांकरोली से श्रीमती भारती आचार्य ने। आप एक सीनियर शिक्षिका हैं, टीचर हैं और साथ ही भजन गाने का बहुत शौक इन्हें, अच्छा कलेक्शन है आपके पास में, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो आपने जहाँ पर संदेश भेजा है साथ ही एक भजन की दो लाइनें भी हमें गा करके भेजी हैं। तो पहले हम भारती जी की आवाज़ में ये संदेश सुनेंगे और उसके बाद भजन सुनेंगे। तो एक बार हम पुनः धन्यवाद करते हैं कांकरोली राजसमंद से श्रीमती भारती आचार्य का कि आपने ये संदेश हमें भेजा। आप भी पता है शिक्षकों की आजकल जी, आप इसे सुनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश भेजने के लिए भी धन्यवाद। तो पहले सुनते हैं संदेश और उसके बाद हम भजन सुनेंगे भारती जी की आवाज़ में और उसके बाद आरंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की विवेचना और हिंदी टीका का पठन। और विवेचनाकार हैं जय दयाल गोविंद का।
जय श्री कृष्ण। गीता पर असंख्य लोगों ने काम किया, जाने कितनी बार हमने गीता पढ़ी और सुनी, लेकिन आपने आशा की किरण में अत्यंत ही सरल भाषा में इसका वर्णन किया है। आपके मुखारविंद से गीता सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता में विशेष तो श्री कृष्ण ही हैं, बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं। हमारे आज के इस संकट काल में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखा रहा है। एकदम साधारण भाषा में कहें तो गीता में हमारे मन में उठे हर प्रश्न का उत्तर निहित है। श्री कृष्ण केवल अर्जुन का सारथी ही नहीं, साथी भी हैं। उनके कहे अनुसार हम चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जीवन में कोई भी परेशानी आए हम आसानी से पार कर जाएंगे। आपने हमारे विचार रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए तहे दिल से आभार, प्रणाम। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते, जब शोक मौज से गिर जाते तब गीता हृदय वचन लाते, कल्याण खजाना भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। अध्याय 2 का श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त अनामयम्। अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
परम कृपाल हरि जय दीन दयाल हरि।
ही पद का क्या भाव है? ही पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई गई है। बुद्धि युक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषीण कहने का क्या भाव है? जो पूर्वोक्त संबुद्धि से युक्त हैं अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषीण कहने का ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार संभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं।
सखा सारथी शरणागत के,
सखा सारथी शरणागत के,
सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि जय दीन दयाल।
उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, वही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है। उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता।
सूरदास ने दर्श किए
ऐसे पुरुषों का निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? जहां राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न, भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना सच्चिदानंद घन, निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का यही भेद है।
अधिकार में केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म दिए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म दिए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा।
भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान दो श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक सब भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह कलील क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलील से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलील के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलील एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, वही बुद्धि का मोह रूपी कलील को पार कर जाना है। श्रुत और श्रोतव्य, इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है? इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वर्या आदि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुके हैं उनका नाम श्रुत है, और भविष्य में जो देखे सुने और अनुभव किए जा सकते हैं उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अपने कर्म का सबके लिए विधान जग में कर्म प्रधान है जग है कर्म प्रधान कर्म प्रधान अकर्मण्यता श्राप है कर्म योग वरदान कर्म किए बिन जगत में प्राणी मृतक समान प्राणी मृतक समान।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्सी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? इस लोक और परलोक के भोगेश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है, उसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक पाती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है? मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है क्योंकि यह मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। पचासवें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया गया है, यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है, इसका क्या तात्पर्य है? वहाँ योग रूपी साधना के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के लिए फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात कही गई है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग, कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए कर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं, इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। ध्यान योग, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। समत्व योग, अध्याय 2 के 48वें श्लोक में योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग, अध्याय 9 के 5वें श्लोक में इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग, अध्याय 14 के 26वें श्लोक में निरंतर अव्याभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग, अध्याय 4 के 28वें श्लोक में योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक है। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सांख्य योग, अध्याय 13 का 24वां श्लोक, इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है, इस कारण अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी, योगी ईश्वर, अध्याय 10 के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी, अध्याय 6 के 32वें श्लोक में अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्त, अध्याय 12 के 14वें श्लोक में परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण यहाँ मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। कर्म योगी, अध्याय 5 के 11वें श्लोक में आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी, अध्याय 5 के 24वें, अभेद्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी। कर्म योगी, अध्याय 5 के 11वें श्लोक में आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी, अध्याय 5 के 24वें, अभेद रूप में ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यहाँ सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी, अध्याय 8 के 14वें श्लोक में अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी, अध्याय 6 के 45वें श्लोक में प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी अध्याय 6 के 10वें श्लोक में एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। और अंत में सकाम गर्मी अध्याय 8 के 25वें श्लोक में वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में योग और योगी को अलग अलग अध्याय के श्लोकों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती
ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण।